स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19/9/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ। राम
चेतन की प्राप्ति नहीं होती। बोलो, समझा रहे
समझा रहे हैं कि अंतकरण की शुद्धि का तात्पर्य वहाँ पर जड़ता से मुक्ति का ही है। जो आप बताते हैं वही बात है, फिर आप अंतकरण की शुद्धि पर इतना जोर क्यों नहीं देते?
अंतकरण में तो शुद्धि तो मानता हूँ, परंतु अंतकरण के द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है,
वो भी बात
ठीक है। मानो जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ये मेरा कहना है। तो अंतकरण के द्वारा हम प्राप्ति कर देंगे, ये कैसे होगा? अंतकरण को हो चाहे जड़ को हो, अंतकरण निर्विकल होने पर भी तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, इससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। योग दर्शन के विभूति पाद में लिखा है, जो 8 अंग है ना योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। 8 अंग है जिसमें ये 3 अंग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 तो आया है इसमें साधन पाद में, और अगर समाधि पाद में 3 है, ये विभूति पाद में 3, धारणा ध्यान और समाधि, ये विभूति पाद में है। मन 8 अंक का भरण तो पहले पाद में किया है, पर प्रकरण छोड़ दिया, 5 तो उसमें ले लिया, और 3 प्रकरण लिया है विभूति पाद में, धारणा ध्यान और समाधि। आप योग दर्शन उसको देख लेना, तो उसमें किया है। इन तीनों का नाम संयम बताया है, त्रय में एकत्र संयम, ये सूत्र है। धारणा ध्यान समाधि बता करके और त्रयम एकत्र संयम, तीनों एकत्र उसको संयम कह रहे हैं। उस संयम की परिभाषा करके, संयम करने से, सूरज में संयम करने से भून देश का ज्ञान होता है। इसकी धारणा ध्यान और समाधि का उपयोग बताया है भगवान ने, पतंजलि महाराज ने। और चित्त वृत्ति और निरोध खास योग दर्शन चीज है, ये वेदांत दर्शन चीज नहीं है। वेदांत दर्शन में तो श्रवण मनन निर्देश 8 अंग है मुख्य, ये तो विवेक वैराग्य समाधि सरस्वति मोक्षता है, साधन चतुष्टय संपन्न हो गए, फिर श्रवण मनन निर्ध्यासन और फिर तत्व पदार्थ संशोधन, ये 8। ये वेदांत का वेदांत साधन 8 है, अंतरंग साधन 8। इस अंतरंग साधन में जो तत्व पदार्थ का संशोधन है, ये मुख्य बताया है। तत्व पदार्थ संशोधन, तो ये संशोधन होता है विवेक से। ये अंतकरण शुद्धि का इतना तो बने ले लो कि वो विवेक ठीक कर सके, इतना ले लो, पर चित्त की एकाग्रता पर इतना जोर नहीं दिया वेदांत में। चित्त की एकाग्रता योग दर्शन दिया है, आप क्या आप कह रहे क्या चाहते हैं? धैर्य रखो, जो सूक्ष्म बातें हैं वे भी तो सुननी होनी चाहिए ना। आपके लिए भी सुबह के समय मैं प्राय ऐसी सूक्ष्म बातें कहता हूँ, दूसरी बात भी कह देता हूँ, तो वे बातें सुनने से संस्कार पड़ता है, अच्छी रहती है। तो इनकी कोई शंका सी कोई मतलब नहीं थी।
तो आप वेदांत के लिए इतना बोलते हैं, उसमें ये नहीं कि अंतकरण शुद्धि करो, ये करो, जड़ता के साथ संबंध रखते हो कैसे कर लोगी? उनकी ये उसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि हम भी तो जड़ता से रहित होने की बात
कर रहे हैं। तो आप हमारे एक ही है, तो पंचदशी में आया ऐसे शास्त्र का तथा चेत दिव्य धाम सिरम, ऐसे ही तुम कहते हो सीधे रहो, तथा चेत दिव्य धाम सिरम उत्तर दिया है, ऐसी बात है आपकी। तो वास्तव में चिन्मय तत्व की प्राप्ति के लिए मैं विवेक को प्रधान मानता हूँ। विवेक क्या सत असत, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, शुद्ध अशुद्ध, ठीक बेठीक, ये है दोनों का अलग अलग ज्ञान। ये अलग अलग ज्ञान जो विवेक है वो फिर अगर जाता है तो तत्त्वम पदार्थ का संशोधन करते हैं। तो तत्त्वम पदार्थ का संशोधन है, ये खास अद्वैत सिद्धांत की प्रक्रिया है। तत्त्वम पदार्थ का संशोधन ये दूसरों की प्रक्रिया नहीं है। ये ध्यान धारणा ये तो औरों में भी आ जाएगी, परंतु ये चित्त को एकाग्र करने का पातंत्र योग दर्शन का विषय है, ये वेदांत का विषय नहीं है। दर्शनों का विषय अलग अलग है, चौं दर्शन है ना, चौं दर्शनों का अलग अलग विषय, अलग अलग अपनी परिभाषा है, इनका नाम न्यारा होगा। तो वास्तव में जीव का कल्याण कैसे हो इस बात को गीता ने लिया है विशेषता से। गीता में सब बातों की सूक्ष्मता से बातें आ गई है, और फिर भी जीव का कल्याण जल्दी कैसे उद्धार हो इस विषय के ऊपर ही ज्यादा गीता का आग्रह है। गीता वो नहीं कहती है जीव के अनेक बाद है, अणुवाद है, महत परिमाण है, अणु परिमाण है, मध्यम परिमाण है, ऐसा आता है जीव के विषय में। ईश्वर सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, ऐसा ईश्वर विषय आता है। जगत अनादि है, अनंत है, अनादि शांत है, कैसा है, ये प्रकृति, ये और जैसा आता है। गीता में अनादि तो कहा है, प्रकृति को अनंत शांत नहीं कहा है, यह अनादि कहा है। और दूसरी ये जो इच्छा अनादि ये बात गीता में नहीं आई है। गीता में खास करके जीव के उद्धार की बात आई है, और उद्धार की बातों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति आई है। सर्वगुह्यतमम भूय, सर्वगुह्यतम एक वह शब्द आया है, और इसमें शरणागति की मुख्यता बताई है। भगवान के शरण हो जाना, मैं भगवान का हूँ। जैसे स्त्री विवाह होने के बाद पति का अंग हो जाती है, कन्यादान कर देने के बाद जब पति की हो गई तो पति पत्नी दोनों मिलकर के एक हो गए, एक गृहस्थ हो गया, अभी अब दो नहीं रहे। वो जैसे एक हो जाती है, ऐसे भगवान के साथ अपने आप को समर्थ करने से एक हो जाता है। ऐसे समर्पण की बात विशेष आती है गीता में, शरणागत की बात। 18वें अध्याय के 56वें श्लोक से 66वें श्लोक तक 11 श्लोक होते हैं। इन 11 श्लोकों में भक्ति का बहुत विशेष वर्णन है। आप अगर देखना चाहो, सबसे प्रार्थना है कि भगवद गीता का जो साधक संजीवनी टीका है उसमें आप देखोगे तो 56 से 66 का प्रकरण बहुत ही उपयोगी है, सब साधुओं की बड़ा उपयोगी है। वो आप देखो, मनन करो, उसमें समझ में नहीं आएगा पूछो। तो भगवान के शरण होना, शरण होने में बात क्या इतनी, हे नाथ मैं आपका हूँ। तो शरण होना हम अपनी भाषा में कहते हैं, जिस तरह से वेदांत सिद्धांत में नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वरूप है जीवात्मा, ये आत्मा शुद्ध है, उसको स्वीकार करना, उसको मान अनुभव कर देना है। इस तरह से गीता ने शरणागति को मुख्य बताया है, और शरणागति स्वतः सिद्ध है। अब ध्यान देना, मैं स्वतः सिद्ध बताऊं आपको। आप इतने बैठे हैं, इनमें से कोई ऐसा कह सकता है कि मैंने अपने माँ का जन्म ने जान करके लिया, अमुक माँ के मैं जन्मूंगा ऐसा विचार करके जन्म किसी ने लिया हो तो बोले? तो भगवान ने दिया है ये मानना ही पड़ेगा। भगवान ने दिया है तो भगवान ने इसको अपने अपना ले लिया ना शरणागत, भगवान ने अपना स्वीकार कर दिया ना। जैसे बच्चा स्नान करना नहीं चाहता परंतु माँ स्नान कराती है, तो इससे बच्चे को माँ ने अपना मान लिया कि नहीं, अपना मान के स्नान कराती है। रोज तो परवाह नहीं करती, क्यों नहीं करती, अपना है। तो अपनापन जो माँ का है, ऐसे जीव मात्र के प्रति भगवान का अपनापन है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा मैं मांस जीव लोग के जीव पूरा मेरा ही अंश है, और ब्राह्मण में भगवान का आश्रय मम सब मम प्रिय सब मम उपजाए है, तो सब जीव जितने गए ये भगवान के आश्रित हैं, तो भगवान ने सबको शरण ले रखा है। इन्होंने जो रुपये पैसों की कुटुंब की शरण ले ली, ये गलती की है, तो इस गलती का त्याग करना है अपने को। शरण होना कोई नई बात नहीं है, भगवान ने शरण ले रखा है, सबको जन्म दिया है, तो आपने नहीं लिया भगवान ने दिया है, और जन्म देने पर आपको सुख पहुंचावे दुख पहुंचावे ये आपके अधीन नहीं है। आप कह दो सुख चाहो तो सुख पहुंचा दुख भी आएगा, तो विधान भी भगवान ने किया है, कब सुख पहुंचाना है कब दुख पहुंचाना है, कब किसकी परिस्थिति कैसी करनी है किसी कैसी करनी है, ये भी भगवान के अधीन है। और कितना दिन जीना है कब मरना है ये भी हमारा अधीन नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपदस विद्यात, ये अपने हाथ की बात नहीं रखी है, तो ये भगवान ने दे रखी है। तो संपूर्ण जीवों को भगवान ने शरण तो दे ही रखा है, क्यों किसका जन्म कहाँ पर होना चाहिए ये भी भगवान निर्णय करेंगे, किस देश में किस नरक को भेजना है स्वर्ग को भेजना है मृत्यु लोग को भेजना है और लोगों को भेजना कहाँ भेजना ये बात है, ये तो सब भगवान ने दे रखी है अपने, तो ले रखी और शरणागत क्या होता है, उसने अपने से ले लिया है। अब ये जो दूजों का शरण लेता है इसका त्याग करना है कि तुम धन का शरण मत लो, बेटे पोते का शरण मत लो, तुम जमीन जायदाद का आश्रय मत लो, ये सब जड है नाशवान है तुम दुख पाओगे। तो माम एक कम शरण मृत्यु का तात्पर्य क्या, मेरे सिवाय और शरण किसी का मत दो, जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल में क्या मैं सहमत हो जाओगे, पर दूसरों न कोई इसमें सहमत नहीं होते, इसमें सहमत होने के लिए शरणागति कहते हैं। आप शरण मेरे रहो सेवा सबकी करो, आपके शरण दूसरे हो सकते हैं उनकी सेवा करो उनका आदर करो पालन पोषण करो, क्योंकि बड़ों के तो सेवा करो आदर करो पूजा करो और सेवा करो और समान की सहायता करो और छोटों का प्यार करो, चीज एक ही है। छोटा बड़ा होने से शब्द अलग अलग होते हैं, सबके पालन पोषण करो ये तो करो, मत उनका शरण मत लो कि बेटा पोता मेरा इतना है मेरे धन इतना है मेरी विद्या इतनी है मेरी योग्यता ये है मैं एक कला कुशल मैं होशियार हूँ मैं बैरागी हूँ मैं त्याग हूँ मेरा मैं त्यागी हूँ बड़ा बैरागीवान हूँ मैं बहुत शास्त्र जानता हूँ मैं गीता जानता हूँ शास्त्रों को जानता हूँ, ये क्या ले लिया तेने ये आफत कर दी तेने, ये भगवान का कहने का तात्पर्य इनका आश्रय मत लो, तो इनकी सेवा करो धन का उपार्जन करो खर्च करो पर धन का आश्रय मत लो। धन के कारण से आप बड़े हो गए, तो धन के कारण आदमी बड़ा होता है तो आप छोटे हो गए पहले ही, धन होने से आपकी इज्जत है आप बड़े आदमी होते हो, और धन नहीं होता आप छोटे आदमी हो जाते हो, तो आप बड़े कहाँ हुए बड़ा तो धन हुआ। अब जरा सोचो विचार करो कि धन होने से आप बड़े आदमी हो गए, धन नहीं होने से आप छोटे हो गए, तो आपकी चीज इज्जत कहीं फजीती हुई आपकी, आप राजी होते हो हमारे धन यहाँ बड़े हो गए, बड़े नहीं है तुम्हारी फजीती हुई है, बताओ इसमें कोई शंका बताओ। हम विद्वान है हम पढ़े लिखे आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो मैं विद्या से विद्या के कारण पढ़ा हुआ तो तुम खुद बड़े नहीं हुए बड़ी विद्या हुई है तो तुम्हारी तो फजीती हुई है इससे। मैं वैराग्यवान हूँ मैं त्यागी हूँ मैं बड़ा विरक्त हूँ, तो विरक्त होने से आप बड़े हुए और विरक्त न होने से आप छोटे हुए, तो वैराग्य त्याग बड़ा हुआ आप बड़े हुए छोटे हुए आपकी इज्जत हुई फजीती हुई, ये चेतना है कि मेरी शरण आ जाए तो छोटा नहीं होगा। किसी की आप शरण जाओ आपको छोटा बनाएगा, गुरु की जाओ गुरु भी छोटा बनाएगा, अरे भगवान मेरे मुकुटमणि भगवान मुकुटमणि बनाएंगे, फर्क है नहीं तुझा में फर्क में भगवान में, मैं हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, है कोई राजा महाराजा धनी मिनिस्टर कोई जो मुकुटमणि बनाए आपको, अब वो छोटा बनाएगा, तो छोटा बनने के लिए आप जाओ, तुम्हारी फजीती हो रही है बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे में अकल होनी चाहिए कुछ, भगवान के स्वर्ण देव भगवान आपको बड़ा बनाएंगे। और वास्तव में बड़े बन जाओगे। आज मीरा भाई का नाम लेते हैं, मीरा भाई सास का नाम तो नहीं लेते, उसके तो पगम पड़ती थी मीरा भाई, तो बड़ी तो वो थी, मीरा भाई छोटी है, पर बड़ी सेवा बड़ होते हैं, जो वामन भजन बड़ की सेवा से बड़ा होता है। तो भगवान के वहां जाने से आपको भगवान अपने से बड़ा बनाएंगे। वो समझ तुलसीदास जी मारे गए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी का दास राम जी सिंह अधिक है। जैसे हमारे लिए सिंध समुद्र होता है, हमारे ये बदल होते हैं, तो बदल हमारे काम आवे, फिर बदल को निहाल हो जाए, समुद्र आ जाए, डूब जाए, सब खत्म हो जाए। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम तो समुद्र है, और ये जितने संत महात्मा ये बदल है, तो हमारे बदल से जीवन मिलता है, समुद्र से मिलता है, जल समुद्र का ही होगा, और कौन से लाएंगे संत महात्मा सिवाय भगवान के, और उनके पास चीज क्या है? जो संत है, अच्छे पुरुष है, उनमें भगवान के सिवाय विलक्षणता क्या है? सब जैसे धनी आदमी है, धन के सिवाय उसमें क्या है? जैसे वो बड़ा हुआ धन के कारण बड़ा हुआ, तो इसमें वो भगवान के कारण से बड़े होते हैं। महात्मा संत होते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो भगवान के कारण करते हैं, आपका करते हैं, तो भगवान वास्तव में बड़े है। तो बड़े क्यों है? कि भक्तों को अपने से बड़ा बनाते हैं, और किसी के जाओ शरण, वो तो आपको गुलाम बनाएगा, बड़ा नहीं बनाएगा कोई भी। इस वास्ते असली गुरु होते हैं, वे चेला नहीं बनाते हैं, वे गुरु बनाते हैं, वे सब संसार का गुरु हो जाए, वो ऐसा गुरु बनाते हैं, वो अपना दास नहीं बनाते हैं। तो भगवान और भगवान की भक्ति तो ऐसी चीज है जो उनके हित के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ काम नहीं करते हैं। स्वार्थ मंत सकल गवाए, सुपन प्रभु परमार्थ नाए, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, हे तुरंत जो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, आप और आपके सेवक, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, तो इनका संग करो, इनका आश्रय लो, निहाल हो जाओगे। आप चीजों को लेते हो, ये साधना है, साधना करनी बड़ी अच्छी है, पर अच्छी होते हो भी है तो साधन ही, साधनों के कारण से आप बड़े होते हो, तो बड़े होने की तरफ आप चल रहे हो, ये ठीक बात है, पर साध है देवी संपत है ये, और दूसरी आसुरी संपत। तो देवी संपत आसुरी संपत में क्या अर्थ हुआ? कि देव नाम परमात्मा की संपत्ति है, इनका आप उपासन करो, परमात्मा के पास जाओगे, और आसुरी संपत्ति असुर नाम प्राणों का है, प्राण पोषण परायण हो जाओगे तो आसुरी संपत्ति होगी। धन संपत्ति, देव खाना पीना, ऐश आराम श्रृंगार आदि करना, ये आसुरी संपत्ति है, और ये प्राण पोषण परायण है, केवल प्राण मेरे जीते रहे, मैं रहूं सुख पाऊं, आराम से रहूं, सुख वैर सुविधा वे, तो सुविधा और सुख चाहना ये आसुरी संपत्ति है। त्याग क्षमा उदारता त्याग वैराग्य आदि परमात्मा की संपत्ति है। तो परमात्मा की क्यों बताई? इसमें एक बड़ी रहस्य की बात है, आपने त्याग किया तो त्याग आपका नहीं है, आपने त्याग किया तो बड़ा अच्छा है, त्याग आपका नहीं है। जैसे अफीम जी होता है, ये अफीम बेचने वाले होते हैं, वो ठेका है, अफीम हम ही बेच सकते हैं, आप नहीं बेच सकते, भांग हम बेचते हैं तुम नहीं बेच सकते, ठेका होता है, तो वो जैसे ठेका होता है, ऐसे त्याग का ठेका हो जाएगा क्या? मैंने त्याग कर दिया, अब त्याग आप नहीं कर सकते, मैंने बैराग दे दिया, आपको बैराग नहीं मिल सकता, मैंने अपना संयम कर लिया, आपको संयम नहीं मिल सकता, ऐसा होता है क्या? मैंने पानी पी लिया, आप पानी नहीं पी सकते, मैंने अन्न खा लिया, तुम खा नहीं सकते, ऐसा ये व्यक्तिगत चीजें नहीं है, ये आसुरी संपत्ति है, केवल शरीर के लिए है और संसार के लिए है, जो जन्म और मरो जन्म मरो, देवी परमात्मा की संपत्ति है, तो उन पर भी आप ठेका नहीं ले सकते कि मेरी है। तो अभिमान किस बात का करते हो? क्या धन तुम्हारे पास है, तुम धनी हो, क्या दूसरा धनी नहीं हो सकता क्या? सबके लिए मना है, क्या ठेका ले लिया गया, धनी में ही होगा तो धनी होगा? ये भाई सबकी चीज है, एक तुम्हारी नहीं है, उस चीज को लेकर तुम अभिमान करते हो तो गलती करते हो ना। ये तुम्हारी चीज हो तो तुम्हारे, मेरे तो गिरधर गोपाल है, और गिरधर गोपाल को अपना मानने वाला अभिमान होता नहीं उसे, भगवान को अपना मानने वाले तो संत दास होते हैं, गरीब होते हैं, उनमें अपनेपन का अभिमान होता ही नहीं। लोग भले ही बड़ा मान ले, वो मन से अपने को बड़ा मानते हैं क्या? अब मन से अपने को बड़ा वही मानते हैं जो वास्तव में बड़े नहीं है। इस वास्ते बह रहता है कि वो छोटा न समझ ले, इस वास्ते मन मोटा समझे, बड़ा समझे, बड़ा आसन मिले, बड़ा नमस्कार करे तो राजी हो जाए, नहीं तो नाराज हो जाए। तो उनको तो बहम है, बड़ा बड़ा बनते इस वास्ते जो छोटा न मान ले। तो सिद्ध हुआ तो मन से छोटे है, इस वजह से बहम रहता है मेरा छोटा न मान ले कोई। भगवान की बहम होता है, संतों को बहम होता है कि मेरे को छोटा न मान ले। तो भगवान के दर्शन करने वालों का भगवान आदर करते हैं। शरणानंद जी के सामने किसी ने कहा कि हम संतों की सेवा करते हैं, उन्हें कहा तुम धूर्त करते हो, तुम धूर्त संतों की सेवा करते हो, भगवान तुम क्या सेवा करते हो, तुम सेवा करते हो, तुम तो लूटते हो, सेवा क्या करते हो तुम, सेवा करते भगवान, तो भगवान सेवा करे भगवान संतों की। तो जो भगवान के भक्त है उनका पालन करना, उनकी सेवा करना, उनका आदर करना, ये भगवान जानते हैं। तुम क्या जानते हो उनकी सेवा में, समझते ही नहीं तुम। उनको भोजन करे जैसा दूध पा दिया, आराम से रख दिया, तो ये उनकी सेवा हो गई। उनकी सेवा करो तो ये बात है, उनके सिद्धांत का पालन करो। संतों की सेवा असली क्या है, संतान जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उस भगवान के भक्त बन जाओ, उनके जो गुण है त्याग बैराग वो आप ले लो, तो संत सेवा मान लेगा आपकी, आपने बड़ी सेवा करी हमारी। या 30 वर्षों सेवा करते हो, ये क्या था, ये सेवा संतों की सेवा है, ये संतों की सेवा नहीं है, ये तो शरीर की सेवा है, शरीर जड़ है, नाशवान है, उसकी सेवा हुई, संतों की सेवा। संतों का जो संतों का इष्ट है, संतों का पूजनीय आदरणीय है, वो आदर आप करने लग जाओ, संत खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी सेवा कर दी। तुझे क्या सेवा करो तुम संतों की, ये तो रहते उपकारी। तो भगवान की तरफ चलने वालों का दर्जा ऊंचा होता है, वो भगवान ऊंचा दर्जा करते हैं, दुनिया भी ऊंचा दर्जा हो जाता है। नाम नाम वे नार है, सुनो सयाने लोए, मेरा सुत जायो नहीं ऋषि सिंध मुंजो को। मेरा ने ना तो कोई बेटा पैदा किया, ना कोई चेला किया किसी को, कितना आदर है, मेरा का नाम दिया जाए, उनके पद गाए जाए, कितना आदर से गाते हैं, कितना शांति सुख मिलता है। भगवान के पद मेरे भाई के बोलने से प्रेम पैदा होता है, तो वो प्रेम पैदा करो, वो भगवान में तुम शरण हो जाओ, ये मीरा भाई की सेवा है। तो सेवा उनकी आत्म सेवा, ये सेवा है उनकी। तो सेवा करने वाले सेवक न होकर सेव्य हो जाते हैं, ऐसे वो संतों के शिष्य होते हैं, वो शिष्य नहीं होते हैं, गुरु हो जाते हैं, दुनिया के गुरु हो जाते हैं। तो असली संत चेला नहीं बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। वो गुरु बनाने की गुरु की टकसाल है, गुरु ही गुरु निकलते हैं सभी, छोटा तो बनाते हैं। तो इस वास्ते भगवान की तरफ चलने में सबके लाभ होता है। तो वो भगवान में सर्व गुह्यतम कहा शरणागति। तो शरणागति को गुप्त क्यों कहा, सर्व गुह्यतम क्यों कहा? भगवान ने संपूर्ण से गोपनीय सबसे श्रेष्ठ भगवान ने शरणागति को कहा है गीता में। सर्व गुह्यतम पद एक बार ही आया और कई बार नहीं आया, गुह आया है, गुह्यतर आया है, रहस्य आया है, ऐसे शब्द गुह्यतम शास्त्र कहा है, पर सर्व गुह्यतम एक बार ही आया है 64 में। तो इसे सर्व गुह्यतम क्यों कहा? सर्व गुह्यतम ये कहा, ये हरेक को कहने की बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि भक्त भगवान अपनी भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने तो भगवान परवश हो जाए, भगवान भक्त के बस में हो जाए, इस वजह से भक्ति नहीं देते। ये बिल्कुल गलती की बात है। भगवान तो परवश होने में आनंद मानते हैं, आप स्वतंत्र होने में आनंद मानते हो। जो परवश हो वो स्वर्वश है, तो स्वर्वश का थोड़ा ही आनंद आएगा भगवान के, भगवान के परवश में आनंद आता है। इस वैश्वे में ये भगवान तो बन जाए छूट सकते, जिसके नाम से दुनिया बंधन छूट जाए, मई अपमान देती तो छूट नहीं सकती नहीं। इसमें बड़पन है भगवान का, भगवान की आराम थोड़े मिलेगा। तो बात क्या है, फिर भगवान भक्ति के आदर करते हैं और सबको तुम क्यों कहा कि शर्म की बात है मैं कहूँ तुम मेरा चेला बन जाओ मेरे सुन जाओ मेरा आश्रय लो ये शर्म की बात है। बड़ा आदमी कैसे कहे अपने मुख से इस वास्ते भाई हरे को कहने की नहीं है सर्व को तुम पहले कहा और आते हैं शासन के बाद सुरसठ में इधन ते नाय न अभक्तार के दर्शन यो विश्रुति हरे को मत कहना ये हरे को कहना पात्र नहीं है। गीता के बीच में दिल्ली में व्याख्यान सुना मैंने कि भगवान तो सम आत्मश्लाघी अपनी प्रशंसा करे कि मेरे मंद भक्त बजे और मेरे बजाओ मेरे मुद्दे देख लो ये दे दर्शाई इस बात भगवान कहते गुजे तुम हरे को कहने के लिए हरे को पात्र नहीं है। हरे के पछता नहीं खोवे की मिठाई बढ़िया अग्नि तेज उसे पचेगी नहीं तो दस्ता लगेगी उसको ये कोई हरे फिर पचा सकेगा इस तत्व को ऐसे जान सकेगा नहीं। इस वास्ते भगवान अपनी भक्ति देने में शर्म करते हैं उनको परिश्रम होगा ये भगवान नहीं डरते हैं पर बड़ा है उसको फिर लोग दुरुपयोग करे तो दुरुपयोग करे तो उनका होगा अहित। निर्दोष को दोषारोपण करने से निर्दोष पर दोषारोपण करने से पतन होता है तो लोगों का पतन न हो जाए इस वास्ते गुप्त रखते हैं पात्र नहीं है लोग इसको नहीं कहना चाहिए। ऐसे काकुरुणी के विषय में काकुरुणी सोचते हैं भगवान ने आनमाद सिद्धि ले लो सजा ले लो लोग ले लो पर लोग ले लो सूरज ले लो सब कुछ काकुरुणी विचार करे भक्ति अपनी देने कही अपने भक्ति देने कहा ही नहीं भगवान ने क्या बात है तू क्या मांगता है मैं भक्ति मांगता हूँ आपसे बहुत खुश होते हैं बहुत खुश होते हैं क्या मैं तुम बड़े बड़ा चतुर है तुम बड़ा होशियार है समझदार है तुम दूसरी बात क्यों मांगेगा भक्ति मांगेगा श्रेष्ठ है प्रशंसा करते हैं उसकी पर अपनी तरफ से नहीं देते हैं तो अपने देने में शर्म आती है इस वास्ते बड़े के बड़प्पन पर शर्म आती है तो अरे भगवान सब श्रेष्ठ मानते हैं सर्व गुरु तुम कह रहे हैं सबसे ओपनी बात है हरे के सामने कहने की नहीं है ये रहस्य की बात है तो इतनी बात है वो ऐसे ज्ञान के लिए नहीं कहा है भक्ति के लिए कहा है। ग्रंथों में आप देखो तो बहुत विलक्षणता बात है उसमें निष्पक्ष होकर देखने से पता लगता है और भगवान की कृपा से ही पता लगता है। हम तो पढ़ते हैं पढ़ने से हमें पता नहीं लगा है पुस्तकें पढ़ी है मैंने पढ़ाई की है पढ़ने से कई बातों का ज्ञान जरूर हुआ है बातों का मन ठीक पता नहीं लगा है। संतों की कृपा से संतों का संग करने से हमारे को चीजें मिली है वो अभी अभी मैं करता हूँ वही पढ़ता हूँ अभी भी संतों की महात्माओं की वाणी की पुस्तकें पढ़ता हूँ और पढ़ते हुए मेरी बातें मिलती है मिलती है गीता भागवत भागवत में आप देखो तो मिलती ही चली जाएगी ऐसे भगवत गीता में बातें मिलती ही चली जाएगी अभी तक नई नई बातें मिलती है मेरे को और बहुत गीता का परिचय हमारा है समुद्र से बहुत तरह से।